इस कार्यक्रम के सभी पात्र, उनके नाम, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं तथा किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, घटना या स्थान से इनकी समानता एक संयोग मात्र है। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति, धर्म या समुदाय को आहत करने का नहीं है। भूत प्रेत और किसी भी अंधविश्वास को हम चैनल या कंपनी दावा नहीं करते और ना ही बढ़ावा देते हैं।
आप सुन रहे हैं कहानी रोकी, कृष्णकांत के साथ सिर्फ गाना पर।
आ गए, आइए, मैं कृष्णकांत एक बार फिर लेकर आ गया हूं कहानी रोकी। अब तक आप इतना समझ चुके हैं कि केविन में कुछ शक्तियां हैं और कुछ कश्मकश भी। अभी अभी उसके दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी है।
आप केविन हो?
जी, मैं ही केविन हूं। जी, मैंने आपको पहचाना नहीं।
मेरा नाम धीरज है। केविन, मैं बहुत परेशान हूं।
पहले आप आराम से शांत हो जाइए। आप अंदर आइए, अंदर बैठिए। हाँ, अब बताइए क्या बात है।
हाँ जी, मेरा नाम धीरज है। मेरा अपना एक बिजनेस है। पिछले हफ्ते से मेरे बेटे की तबीयत खराब सी चल रही है। उसका शरीर बर्फ सा ठंडा और आग सा गर्म होता जाता है। प्लीज प्लीज हेल्प मी केविन, प्लीज हेल्प मी।
देखिए, मुझे लगता है कि आपके बेटे की तबीयत खराब है और आपको किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगा।
नो, मेरी हेल्प सिर्फ तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें सुनने के बाद ही तुमसे उम्मीद बांध के यहाँ आया हूँ। प्लीज प्लीज हेल्प मी केविन, प्लीज हेल्प मी।
देखिए, मुझे नहीं पता आपने मेरे बारे में क्या सुना है, क्या नहीं सुना है। शायद आप गलत दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं।
दरवाजा भी सही है, इंसान भी सही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे बेटे पर एक रूह का कब्जा है। वो मर रहा है केविन।
देखिए, शांत हो जाइए। देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं एक सवाल की तलाश में भटक रहा हूं। रोह की जानकारी पाकर अपने अतीत में हुए एक घटना को समझना चाह रहा हूं। प्लीज, तो आप प्लीज मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखिए।
केविन, मैं बहुत परेशान हूं। तुमसे उम्मीद बांध के यहां आया हूं। प्लीज प्लीज हेल्प मी केविन, प्लीज हेल्प मी।
ठीक है।
केविन उस अतीत को अभी तक ढो रहा है जहां पे उसने अपने दादाजी की आत्मा को खुद भेजा था। पर उसके दादाजी की आत्मा ने आखिर ऐसा क्या किया था कि केविन उनको भेजने पे मजबूर हो गया था? अतीत की चीखें अक्सर वर्तमान की तस्वीर को सुन कर देती हैं। केविन भी इसी उधेड़बुन में था। खैर, धीरज ने किसी तरह केविन को मनाहे लिया अपने साथ चलने को, और केविन भी एक ही शर्त पर गया कि अगर उसे ये मसला ज्यादा गंभीर दिखा तो वो चला आएगा।
केविन, प्लीज कम। मनीष, वो ऊपर वाले कमरे में है।
एक बाबा आए थे। मनीष ने उनको ना जाने कौन सी शक्ल दिखाई कि वो खुद ही बीमार हो गए और डर कर चले गए। पर उससे पहले मनीष को बेड से बांधने में हम लोग कामयाब हो चुके थे।
ओके, मैं समझ गया, पर मैं पहले उसे देखना पसंद करूंगा।
श्योर, सीढ़ियों से ऊपर लेफ्ट में दूसरा कमरा है मनीष का।
ओके, आप मेरे लिए हाथ पैर धो के कुछ 11 अगरबत्तियों को जला के लाइए, उस कमरे में थोड़े धुएं की जरूरत पड़ेगी।
केविन जब वहां पहुंचा तो कमरे में सामने बेड पे मनीष लेटा हुआ था और उसकी हंसने की आवाज आ रही थी। ये हंसी मामूली नहीं थी, ये हंसी शैतान की थी। केविन ने अब तक ऐसी डरावनी हंसी कभी नहीं सुनी, पर केविन डर जाए वो रो नहीं था। उसको अपने दादाजी के दिए ज्ञान और अपनी खोज पे बड़ा यकीन रहता था। केविन ने उस रूह से बात करने की कोशिश की और फिर केविन ने कहा,
कौन हो तुम? क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे?
नो, मुझे तुमसे बात करने में कोई रस नहीं।
पर तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं।
केविन, तू जितना समझता है उतना भी चालाक और ताकतवर नहीं। तेरे यहाँ आने से पहले मुझे पता था तू आएगा, यही रस तेरे पास ही जाएगा। पर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
मैं तुमसे कोई दुश्मनी नहीं निकालना चाह रहा, मैं बस चाहता हूं कि तुम्हारी और मनीष की दोनों की मदद की जा सके, तो अगर कुछ बताना चाहो तो प्लीज बताओ।
आप सुन रहे हैं कहानी रूह की, कृष्णकांत के साथ सिर्फ गाना पर।
सर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पापा प्लीज बचा लो, क्या हो रहा है मुझे?
बेटा तुम टेंशन मत लो, आई एम विद यू, हम कुछ करेंगे बेटा, वी विल सेव यू। केविन प्लीज हेल्प अस केविन।
धीरज जी, आप उन अगरबत्तियों से जरा इस कमरे में धुआं तो दीजिए। मनीष, मैं केविन हूं, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं, मेहरबानी करके मुझे बताओ, क्या तुम्हें किसी अजनबी ने कुछ खाने को दिया? क्या तुमने किसी ऐसी चीज को छुआ है जो संदेहजनक हो? कुछ भी याद हो तो प्लीज बताओ, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी है जानना कि ये किसकी आत्मा है। बिना ये जाने मैं आत्मा को काबू नहीं कर सकता। मेरा मतलब तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं है, मैं बस मनीष से बात करना चाह रहा हूं। मनीष प्लीज बताओ, कुछ ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ हफ्ते भर पहले?
सर मुझे कुछ याद नहीं, मैं बस कॉलेज से आया और दर्द होने लगा। पापा प्लीज हेल्प मी, इट्स पेनिंग, बहुत दर्द हो रहा है।
कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे अंदर छुपी ताकत से कुछ सवाल करना चाहता हूं। सुनो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम मेरी बातों का जवाब दोगे?
सर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पापा प्लीज हेल्प मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
कुछ नहीं होगा बेटा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, भगवान पे भरोसा है हमारा, सब ठीक हो जाएगा।
आखिर ये आत्मा चाह क्या रही है और ये अब मुझसे बात क्यों नहीं कर रही?
केविन क्या हो रहा है मेरे बेटे को?
धीरज जी, कुछ खास नहीं, बस एक जिद्दी सी आत्मा है जो खेल खेल रही है।
क्या मैं मर जाऊंगा? ये क्या हो रहा है मुझे?
वो अभी नहीं मर रहा, पर मरेगा ज़रूर। वो भी तड़प तड़प के। और तू सुन चिड़गोजे, तूने मुझे सिर्फ एक कमजोर ही बनाया, इसके साथ साथ मैं तुम सबको कैसे दर्द दूंगा, कैसे दर्द दूंगा।
कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी सोच से परे हो। केविन के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो रूह कोई कोरी धमकी नहीं दे रही थी, उसके पास सच में ताकत थी, जिद की ताकत। एक रूह की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी जिद, और बिना जिद को खत्म किए रूह को खत्म करना नामुमकिन है। केविन ने अपने मंत्रों की ताकत का परिचय उस रूह को दिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया।
ये तो ये क्या हो रहा है? ओह नो।
केविन घबरा जाता है। अब तक उसे लगा था कि मंत्र की शक्ति से रूह पे शिकंजा कसा जा सकता है, पर जब तक तुम्हें रूह का पता ही ना हो, रूह पे कुछ भी काम नहीं कर सकता। ये नई बात आज केविन मौत के मुंह में जाते जाते सीख चुका था। रूह ने केविन को 24 घंटे का समय दिया है, उसके बाद मनीष की मृत्यु होगी और रूह केविन के शरीर को अपना घर बना लेगी। क्योंकि ये भी रू का नियम है कि जिससे वो लड़ती है उसके शरीर पे कब्जा उसे करना ही होता है, और ये रूह जिद्दी है।
मिस्टर धीरज, मुझे लगता है कि हमें मनीष के दोस्तों से कुछ जानकारी लेनी चाहिए। आप मुझे उसकी डिटेल्स दीजिए कि उसका कॉलेज कहाँ है, उसके दोस्त कौन कौन है, शायद इससे हमें कुछ पता चल सके।
केविन, मनीष डीडीएस का स्टूडेंट है और उसका एक बेस्ट फ्रेंड है गौतम। शायद वो तुम्हें कुछ बता दे। मैं तुम्हें उसका नंबर दे देता हूं।
थैंक यू। अब मुझे निकलना होगा क्योंकि समय बहुत कम है।
तू मरेगा कल तेरी बारी है।
केविन, प्लीज हेल्प अस केविन।
मनीष को कुछ नहीं होगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। अच्छा, मैं चलता हूं।
इस रूह की दुनिया की उधेड़बुन में पहली बार केविन पे मौत का संकट था। केविन के पास अब मनीष के साथ साथ खुद को भी बचाने की जिम्मेदारी थी। उसे उस वजह का पता लगाना होगा जिसकी वजह से मनीष के अंदर रूह ने प्रवेश किया, फिर उस रूह से लड़ने का तरीका भी ढूंढना होगा। और ये सब करने के लिए उसके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। रूह ने अपना दाव खेल दिया है। अब बारी केविन की है। क्या केविन मनीष और खुद को बचा पाएगा या ये रूह उसकी जिंदगी की भूल बन के आई है? क्या केविन दूसरों के घर की आग बुझाने के चक्कर में खुद ही झुलस कर मर जाएगा? सब पता चलेगा जब सुनेंगे कहानी रूह की, मेरे यानी कृष्णकांत के साथ, सिर्फ गाना पर।
कहानी रूह की, गाना पर कृष्णकांत के साथ। कहानी रूह की क्रिएटेड बाय तारिक अहमद।